Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Svetashvatara Upanishad, Chapter 5 and 6, presented by Swami Sri Atmananda Giriji. Thank you. Om Namah Shivaya.
Svetashvatara Upanishad ke Swadhyaya mein पहले अध्याय का 12वां मंत्र एतज्ज्ञेयम् नित्यमेवात्मसंस्थम् नातः परं वेदितव्यं हि किञ्चित् भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा सर्वं प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्ममेतत् एतज्ज्ञेयं नित्यमेवात्मसंस्थम् नातः परं वेदितव्यं हि किञ्चित् भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा सर्वं प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्ममेतत् आत्मस्थं तीर्थं उत्सृज्य वहिस्तीर्थादियो व्रजेत् करस्थं स महारत्नं त्यक्त्वा काचं विमार्ग्यति। तो ये बताया नहीं बताया? आत्मस्थं तीर्थं, अपने में ही रहने वाला पवित्र तीर्थ का परित्याग करके, उपेक्षा करके, बाहर के तीर्थों को घूमता है पवित्र होने के लिए। सबको पवित्र करने वाला, पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानां च मंगलम, सभी को पवित्र करने वाला आत्मतीर्थ इसी शरीर के अंदर विद्यमान है। उसकी उपेक्षा करते हुए बाहर के तीर्थों में पवित्र होने के लिए दौड़ता रहता है, मानो वो व्यक्ति ऐसा मूर्ख व्यक्ति है। वो करस्थम स महारत्नम, दिव्य चिंतामणि का परित्याग करके, हाथ में आया हुआ चिंतामणि का परित्याग करके, काचम विमार्ग्यति, कांच के टुकड़ों की खोजी करता है। तो कहने का अभिप्राय यह है, कांच की खोजी करके वह कांच को उपलब्ध होगा, प्राप्त कर भी लेगा, तो उस कांच से उसका कोई प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं। यदि सभी को पवित्र करने वाला, गंगा को पवित्र किया किसने? भगवान शिव की जटा से निकली हुई गंगा, वह यदि शिव के जटा से न निकलती तो उसको कोई पवित्र न कर सकते, वो पवित्र न होती। फिर उसमें स्नान करके कोई भी पवित्र न होते, समझे नहीं? ब्रह्मा जी के कमंडलों में आई तो वहां से निकली, फिर भगवान विष्णु के, परमात्मा के चरण का स्पर्श किया, तब गंगा पवित्र हुई। और उस गंगा में डुबकी लगाकर तुम पवित्र होते हो। यदि भगवान विष्णु का चरण और भगवान शिव का मस्तक का स्पर्श न कर पाती तो गंगा पवित्र न होती, तो तुम उसमें गोता लगाकर पवित्र न हो पाते। तो गंगा को पवित्र बनाने वाला शिव, गंगा को पवित्र बनाने वाला विष्णु, जिसके पाद स्पर्श से गंगा पवित्र हुई, वो शिव और विष्णु दोनों ही तुम्हारे हृदय में विराजमान हैं। इस बात का अनुभव करोगे तो गंगा नहाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तीर्थ को तीर्थ बनाने वाला तो वो अंदर ही पड़ा है, इसलिए आत्मतीर्थ तो यहीं पड़ा है। इसके उपेक्षा करके यदि बाहर घूमोगे तो उससे तुम्हारा कोई प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं। तो यहां भाष्य में दिव्य रत्न का परित्याग करके कांच को खोज रहा है मानो। तो हमारी कृष्णा बहन मटानी अभी कहने लग गई तो भाष्य में कांच का दृष्टांत आया, क्या कांच उससे भी पहले था क्या? तो 1250 वर्ष तो शंकराचार्य जी का ही हो गया, तो उनको ये मान्यता होगी कि शायद 1200 वर्ष वैज्ञानिक लोग तो अभी कांच बनाए हैं, है ना? वैज्ञानिक आविष्कार तो अभी 200-400 वर्ष पहले से, 800 वर्ष पहले, 1000 वर्ष पहले। अब वो जब वैज्ञानिक लोग अभी के हैं और शंकराचार्य ने दृष्टांत दिया 1250 वर्ष पहले के, क्या उस समय भी कांस थे क्या? ये प्रश्न स्वाभाविक ही है, लेकिन हमारा वैदिक सिद्धांत ये विज्ञान तो आज का थोड़ी है। अनादि जो विज्ञान साइंस है उसका तो ये लोग जूठन खा रहे हैं और उसी का वमिट कर रहे हैं। किसका? वैदिक विज्ञान का जूठन खाकर फिर उसका वॉमिट कर रहे हैं ये लोग, और घमंडी कर रहे हैं कि यह आविष्कार हमने किया। अरे कांच का अनादिकाल से कांच की चर्चा है, पहले के विज्ञान उस साइंस में आज का साइंस कहां पहुंच पाएगा? किसी भी हालत में पहुंच नहीं सकता है। तो आगे चलो, अथवा एतत् अपरोक्षम प्रत्येकात्मत्वम तन नित्यम अविनाशी स्वयं महिम्न स्थितम ब्रह्मैव ज्ञेयम्। तो इन सब से क्या हुआ? प्रत्येक आत्मा के रूप में, प्रत्येक माने अंदर, प्रत्येक आत्मा माने अंदर, पराक आत्मा और प्रत्येक आत्मा, पराग माने बाहर, प्रत्येक माने अंदर, परांचिखानी बाहर जाने वाली वृत्ति को परांचिखानी बाहर की तरफ जाती है, खानी इंद्रियाणी समूहानी इंद्रिय समूह, पराअंची परगच्छति, प्रत्येक अंची अंदर की तरफ जाने वाला। तो प्रत्येक आत्मा तन नित्यम अविनाशीनम अविनाशी स्वयं महिमनी स्थितम ब्रह्मैव। तब अंदर अपने ही स्वरूप में अवस्थित जो ब्रह्म है उसी को जानना चाहिए। एतद् ज्ञेयम् मूल श्रुति में आया है ना, मूल श्रुति में क्या आया? एतद् ज्ञेयम्, वही ज्ञेय है, उसी को अपने रूप से जानना चाहिए। दुनिया को न जानो तो तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा, यदि अपने को नहीं जाना तो बड़ा नुकसान होगा। यह चेद वेदी तथा सत्यमस्ति केनोपनिषद, नचे ध्यान वेदी महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्त धीरा प्रत्यक्कात्मा अमृतत्वमिच्छ प्रत्यात्मा अमृतत्वमिच्छ। तो अमृतत्व को चाहने वाला व्यक्ति तो प्रत्येक आत्मा को जानना ही चाहिए, वही ज्ञेय है। और सब हेय है भाई, और ज्ञेय कुछ भी नहीं है। इसलिए तो कहा अल्पस्य आयु, आयु थोड़ी है, और पढ़ने के लिए शास्त्र बहुत ज्यादा है, बहुलाच शास्त्रम। अब क्या कर लोगे, थोड़े आयु में, आयु थोड़ी है, पढ़ना बहुत ज्यादा है। तो यत् सारभूतम तद उपासनीयम। तो समझदार को चाहिए कि जो सार है उसी का आश्रय ले लेना चाहिए। हंसो ये था, जैसे हंस चीर नीर चीर विवेकी हंस, अपने ग्रहणीय अपने योग्य भोग्य पदार्थों को ग्रहण करता है, बाकी सबका परित्याग कर देता है। दूध में रहा हुआ पानी के अंश का वो परित्याग करते हुए दूध के जो सार है छेना उसको खाता है वो। तो कहते हैं ना नीर चीर विवेकी हंस, तो उसमें कोई कुछ नहीं है, उसके जिह्वा में केमिकल है, खटास है, खटास। हंस के जिह्वा में ऐसी केमिकल ऐसी खट्टाई रहती है, वो दूध में मुख डालते ही उस केमिकल से दूध फट जाती है। फटने पर पानी अलग और दूध का भाग अलग हो गया, तो उसने वो दूध का जो भाग अलग छेना छेना वो खा लेती है, पानी छूट जाता है। तो कहते हैं कि हंस क्या बड़ा भारी काम किया, उसने पानी को अलग किया, दूध को अलग किया। वो तो हम भी कर लेते हैं, और क्या नींबू निचोड़ दो, दूध अलग और रसगुल्ला बना लेते हैं है। तो जुवा की विशेषता है, वो हंस की बुद्धि की विशेषता नहीं है, लेकिन उदाहरण हो गया बुद्धि की विशेषता। कस्मात ही शब्दों यस्माद अर्थ है, ये जो मूल श्रुति में ही आया है, इसलिए किस लिए वेदितव्यम, आत्मानम एव वेदितव्यम, आत्मा को ही जानना चाहिए, किस लिए जानना चाहिए, बोले इसलिए यस्माद। नाता परम वेदितव्यम अस्ति किंचिदपि, क्योंकि इससे अलावा और कुछ भी जानने योग्य नहीं है। जानने योग्य नहीं है मतलब जानकर इनके द्वारा तुम्हारा प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं है, है ना। मुकेश का घर कितने करोड़ में बना, अरे भाई जानकर क्या लेना है भाई, है जानकर कोई प्रयोजन नहीं है। और को और सब चीज को जानकर क्या प्रयोजन है भाई, तुम्हारे क्या प्रयोजन सिद्ध होगा। तुमको एक रात भी सोने को मिलेगा नहीं उस घर में, पांव रखने को नहीं मिलेगा, हाँ, तो क्या मतलब है भाई। फिर भी जिज्ञासा अनावश्यक। यस्मान नाता परम वेदितव्यम अस्ति किंचित श्रूयते च बृहदारण्यके, क्योंकि बृहदारण्यक उपनिषद में इस बात को कह दिया गया है। तदेतत् पदनीयमस्यः सर्वस्य यद अयम आत्मा, सभी के आत्मा के रूप में विराजमान वह परमात्मा है, आत्मा है, उसी को पदनीयम प्राप्त कर लेना चाहिए। पदनीय प्राप्तव्य है, गंतव्य है, ज्ञातव्य है ना, सभी के द्वारा उसी को पाना चाहिए, क्योंकि वही प्राप्त करने योग्य है। इसलिए सभी को यह प्रयत्न करना चाहिए कि वही प्राप्त हो। कहते हैं ना, मानधाता जिसकी चर्चा उस दिन किया था, इंद्र ने अंगूठा चुसा दिया था, बाप के पेट से पैदा हुए थे, है ना, उनकी 50 कन्याएं थी। कहते हैं कितनी थी, 50 कन्या, और सौभरी ऋषि हजारों वर्ष पानी के अंदर समाधि लगाकर बैठे हुए थे। भागवत का प्रसंग 9वें स्कंद में। तो उनकी समाधि टूटी तो मछलियां आपस में क्रीड़ा कर रही थी, जल क्रीड़ा, उसके द्वारा उनकी वासना जग गई। वासना क्षय तो हुआ नहीं था योगियों का, ज्ञानी का ही वासना क्षय होते हैं, योगी का नहीं होते। तो उनके मन में इच्छा हो गई कि क्या आनंद मना रहे, मैं भी इसी तरह आनंदित हो, कोई साथी मिले तो, लेकिन क्या करो, अकेले हूं। जल से बाहर आ गए। अब मछली जिस तरह आनंदित हो रही है विषय आनंद को लेकर, उसी तरह मैं भी आनंदित हूं, लेकिन उसके लिए मेरे को कौन कन्या मिलेगी, तो कहां जाएं, किसके साथ शादी करूं। तो योगी तो थे, ध्यान लगा के देखा, अरे मैं जिसके राज्य में हूं उस राजा के तो 50 कन्याएं हैं, जाता हूं और एक कन्या को मांग लेता हूं और उसी के साथ क्रीड़ा करूंगा, विषयानंद का भोग करूंगा। तो सीधे ही मानदाता ऋषि के यहां चला गया। सौभरी ऋषि, मानदाता ने देख लिया कि अरे इतने बड़े ऋषि तपस्वी महाराज किस प्रयोजन से आए हैं, आप का क्या प्रयोजन सिद्ध करूं, मैं तो आपका दास हूं, कहिए मैं क्या सेवा कर सकता हूं। उन्होंने कहा कि राजन तुम्हारी 50 कन्याएं हैं, ये कन्या मुझे दे दो, मैं उसके साथ शादी करके विषय आनंद का भोग करूंगा। मानदाता को धर्म संकट आ गया, मेरी कन्या एक से एक स्वर्ग की अप्सरा जैसी है, अब ये हजारों वर्ष पानी में तपस्या करके शरीर सुखाकर एकदम लकड़ पत्थर हो रहा है बूढ़ा ये, अब मैं यदि हां कर देता हूं तो मेरी कन्या जब ये देखेगी इस बूढ़े को तो रोएगी, मेरा बाप ऐसे बूढ़े के साथ शादी करा रहा है, इससे अच्छा तो पैदा होते ही मार डाला होता, जरूर उसके चित्त दुखी होगा। अब यदि नहीं, तुम बूढ़े हो गए हो, मेरे कन्या के योग्य नहीं हो, यदि मैं कह देता हूं तो कहीं क्रोधित तो होकर मेरा वंशनाश न कर दे, तपस्वी है, ऋषि है, तो मध्यम मार्ग निकालना चाहिए। तो कहा कि ऋषिवर, तो आपकी इच्छा है तो मैं उसका निषेध तो नहीं कर सकता हूं, फिर भी आप जाएं जहां मेरी कन्याएं हैं, जो आपको वरण करेगी उसके साथ आप विवाह कर लेना, यदि कन्या वरण नहीं करेगी तो मैं कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता हूं, कन्या वरण कर ले तो। मानदाता यह समझ रहा था कि इस बूढ़े को मेरी कन्या कोई भी वरण नहीं करेगी, तो अपने आप ही निपट जाएगा समस्या। तो ऋषि समझ गए उस राजा के अभिप्राय को, इस अभिप्राय से इसने ये कहा है। तो राजमहल से बाहर निकले, रास्ते में उन्होंने योग संकल्प के द्वारा काया विभव कर लिया कि ऐसा दिव्य शरीर बना लिया, क्या सुंदर, साक्षात मनमथ, मनमथ भागवत में आता है ना, साक्षात कामदेव का अवतार। जब गोपियों ने कृष्ण को देखा उनको लगा, कंस के मल्ल युद्ध के रंगशाला में है, जिसने जिस दृष्टि देखा उसको वही दिखाई पड़े। तो उन्होंने बड़ा सुंदर रूप धारण किया और चले गए सीधे ही कन्या अंतपुर में। राजाज्ञा थी, किसी ने रोका नहीं। जैसे दरवाजे से अंदर प्रवेश कर लिया सौवरी ऋषि ने, जिन कन्याओं ने देखा उसको, उसी के मन में यह संकल्प हो गया कि मैं शादी करूं तो इसी से करूं, शादी करूं तो इसी से करूं, बस यही मेरा वर होगा। परिणाम क्या हुआ, 50 के 50 सौ ने मानधात्मा ने सौवरी ऋषि का वरण कर लिया। लियो जी, सभी ने वरण कर लिया। अब सभी के साथ रहना पड़ा। रहते रहते योग संकल्प से 50 घर तैयार किया और अपने आप को काया विभव करके 50 के रूप में परिणत हो गए और 50 कन्याओं के साथ, पत्नी के साथ रहने लग गए। परिणाम यह हुआ कि एक एक पत्नी से 10-10 बच्चे पैदा हो गए। भागवत है वो, ये है भागवत। 500 तो वो बच्चे हुए और 50 ये, और खुद कितना बड़ा परिवार हो गया। कहां अकेले बैठते थे, कहां उस वासना के चलते क्या हो गया देख लो। अब योग शक्ति थी तो शक्ति का संकल्प पुनः तपस्या करते रहते तो फिर वो शक्ति का स्रोत बना रहता। भोग में जब शक्ति का प्रयोग किया तो योग शक्ति खत्म। तो अब तो सभी मांगते हैं ये लाओ वो लाओ वो लाओ, संकल्प करो, योग शक्ति तो है ही नहीं। तब झंझट लगा तो हैरान हो गए कि अरे मैं कहां मुसीबत में फंस गया। तो निकल के चले गए जंगल में। तो एक संत मिले, बोले क्या बात है ऋषिवर। बोले महाराज बड़ी समस्या हो गई। क्या तपस्या किया, मछली के दृश्य को देखा, वासना जग गई और योग शक्ति थी उसके द्वारा मैंने ये सब भोग भोगा। अब शक्ति खत्म हो गई, अब मैं लाचार हूं, क्या करूं।